Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA.
तो मैं इसके बारे में बता दूं कि ये एक क्लू बेस्ड स्टोरी राइटिंग प्रोग्राम है, सर्किल है, जिसमें हम कोई एक टॉपिक देंगे, कोई जगह का नाम दे सकते हैं या कोई किसी शख्स का नाम दे सकते हैं, कोई शहर का नाम दे सकते हैं, कोई रिश्ता दे सकते हैं, ऑफिस से लेकर तमाम वर्क प्लेसेस दे सकते हैं, यात्राएं दे सकते हैं, या ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिसपे हम एक क्लू देंगे कि वो कहानी में उस क्लू का आना बहुत जरूरी है, उस क्लू का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पर वो पूरी कहानी बेस्ड होगी। तभी इस प्रोग्राम का नाम है कहानी बुनो, यानी जो भी स्टोरी राइटर्स हैं वो क्लू को समझें और क्लू के इर्द गिर्द जो भी वो अपना महसूस करते हों, उससे रिलेटेड जो भी वो अपना महसूस करते हों या जो भी सोचते समझते हों कि इसमें ये चीज होना चाहिए, तो वो कहानी बुन सकते हैं। और कहानी बहुत ज्यादा लंबी ना हो, हमारा टाइम 20 मिनट का ही है हमारे पास, तो सिर्फ 10 मिनट से लेकर 12 मिनट तक आसपास की स्टोरी होनी चाहिए।
शॉर्ट स्टोरी
5 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, और मेरे ख्याल से शब्द संख्या 1000 के अराउंड ठीक रहेगा दीपिका जी,
और थोड़ा हाँ बस उसके अंदर, क्योंकि ये जाएगी फिर आपकी 10 मिनट तक चली जाएगी।
हाँ, एक
तो
1000
छोटी हो भी हमें कोई एतराज नहीं, आप 2 मिनट 3 मिनट की भी कहानी कोई लिख सकता है,
कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कहानी 2 मिनट की भी कही जा सकती है, बशर्ते कि उसमें जान हो और वो अपनी बात कह ले, जैसे शायरी होती है कि दो लाइनों में, यानी एक शेर 2 लाइन में अपनी पूरी बात कह लेता है। वैसे भी कहानियां छोटी छोटी लिखी जा रही हैं आजकल, जैसे फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया पे लिखी जाती हैं। और तो यही है हमारा प्रोग्राम, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ऑडियो की दुनिया में एक नए तरीके का है कि हम क्या बोलते हैं, ऐप के जरिए अपनी कहानी को हम दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही रेडियो प्लेबैक इंडिया पे एक ही प्रोग्राम नहीं है, एक से बढ़कर एक है, और रेडियो प्लेबैक इंडिया सीने पहली, कहानी बुनो, फिल्म की बात, द शायरी जोन, बाथरूम सिंगर्स क्लब, इनसाइड द स्टोरी डांस, द रागा लिगेसी जैसे अच्छे अच्छे बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आ रहा है। आप उन सबको भी सुने, उनका टाइम एक एक करके आप जब जुड़ेंगे मेंटजा ऐप पे तो वो लाइव आपको दिखाई देगा, आपको मैसेजेस जाएंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन जाएगा। जी दीपिका जी,
वसीम जी, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप लेखक ही हो बहुत बड़े या कुछ, जो हाँ, आपका कुछ कोई भी मन करे कहीं कुछ भी कहानी आप बुन सकते हैं, जो हम टॉपिक दे रहे हैं उससे रिलेटेड,
बिल्कुल बिल्कुल,
और कोई भी इस कहानी को लिख सकता है, आप, हम, दर्शक, जो श्रोता है, सब कोई भी जो अटेंड करें, जिसका मन है आप वो लिखिए। हाँ, तो ये कहानी कहाँ भेजनी होगी वसीम जी, ये सब आप जरा बता दीजिए सबको।
ये हम बताएंगे प्रोग्राम के अंत में। कहानी बुनने के लिए कि वो इमोशन हर आदमी के पास है दीपिका जी, हर आदमी के पास अपनी कहानियां चलती रहती हैं, और कहानी सबसे ज्यादा इमोशन और फीलिंग से जुड़ी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्टोरी टेलर या स्टोरी राइटर होना जरूरी है, ऐप पर होना जरूरी है, ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। अगर वो ऐप पर है तो वो सुने, उसको समझ जाएंगे कि हाँ हम इस तरह की कहानियां बुन सकते हैं। अभी हमारा ये पहला इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, और इसमें आपने एक मुझे एक क्लू दिया था जिस पर मैंने एक कहानी लिखी थी, आपको याद होगा दीपिका जी,
जी,
तो
जी
उसके
जी,
बारे में आप बताएं और उस कहानी को नरेट भी करें, हाँ, ताकि हमारे जो श्रोता हैं वो उस कहानी को सुने और समझें और ये समझ लें और उनको जानकारी हो जाए कि क्लू बेस्ड कैसे कहानी लिखी जाती
और
है,
और उनकी कहानी हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे
हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे नरेट करेंगे, और उसके बारे में उस कहानी को लिखी क्यों गई, वो कहानी उस टॉपिक पर वही क्यों लिखी गई, उसका एंड क्या रहा, उसकी शुरुआत क्यों वहां से हुई, तो उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे लास्ट में। पहले आप कहानी,
थैंक यू वसीम जी, और आज का जो टॉपिक दिया गया था, एक सिचुएशन भी कह सकते हैं आप, एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे रोती हुई लड़की दिखाई दे रही है, तो आप इसको टॉपिक या सिचुएशन कुछ भी कह ले। और जो कहानी मेरे पास आई है वो वसीम अकरम जी ने लिखी है, और उसका शीर्षक है जाओ माफ किया। तो आपके सामने प्रस्तुत है वसीम जी की कहानी, जो कि मैं पढ़कर सुनाऊं।
जी,
काफी देर से बहुत तेज बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जहाजों की उड़ानें रद्द हो जाएंगी, एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में बैठे लोग बाहर हो रही तेज बारिश से घबराए हुए थे। कोई अपने परिजन के इंतजार में था जो शायद बारिश की वजह से कहीं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। वहीं कोई इस कश्मकश में था कि अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई तो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा और सारा बना बनाया काम ही बिगड़ जाएगा। वक्त की बर्बादी जो होगी वो तो होगी ही। एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में एक कोने में एक बेंच पर शालिनी अकेली बैठी थी। थोड़ी भीग गई थी वह। अभी कुछ देर पहले ही तो आई थी एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में, जब बारिश ने जोर पकड़ना शुरू किया था। शुक्र है तब बारिश इतनी तेज नहीं थी जितनी की अब थी। तेज बारिश की वजह से मौसम कुछ सर्द हो चुका था, लेकिन शालिनी के दिल के दर्द के भीतर एक बहुत दर्द जग रहा था जिसकी आग दहक रही थी। वह गुमसुम थी पर उसके कानों में विशाल के तीखे अल्फाज गूंज रहे थे। उन अल्फाज के थपेड़ों से शालिनी के कान दर्द से तड़प उठे और उसकी आंखों के कोरों से शबनमी बूंदें बाहर निकल आई और एक रेखा में मिलकर उसके गालों पर नदी बनाने लगी। मेरी क्या गलती है अगर मैं मां नहीं बन सकती, उसके होंठ बुदबुदाए और उसके गालों की नदी से मोती का एक दाना उसके दामन पर टपक पड़ा। शालिनी के ख्याल में वह मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर उसका पति विशाल बुरी तरह उबल पड़ा था और अपनी ही पत्नी शालिनी पर अजीब तरह के इल्जाम लगाने लगा था जिसका कोई ठोस आधार नहीं था। ये बात अलग है कि विशाल को गुस्सा जरा जल्दी आता था, लेकिन ये क्या कि बिना किसी गलती के कोई किसी पर बेबुनियादी इल्जाम लगा दे। खुद को उसके गुस्से से बचाते हुए शालिनी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब विशाल ने हद पार कर दी तो शालिनी ने भी गुस्से में वो पूछ लिया जो उसके जहन में एक अरसे से पल रहा था। मुझे ही क्यों इल्जाम देते हो, तुम क्यों नहीं कराते अपना चेकअप? शायद शालिनी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विशाल का हाथ उठ गया। शालिनी तो जैसे सुन्न पड़ गई, मानो कोई पहाड़ उसके ऊपर आ गिरा हो और उसके खत्म हो चुके जिस्म को उसकी रूह कहीं से देख रही हो। दरअसल विशाल के भीतर के अहम ने यह मानने से ही इंकार कर दिया था कि एक मर्द में भी कोई कमी हो सकती है जिसकी वजह से वो बाप नहीं बन सकता। शालिनी की आंखें सूज गई थी, बहुत रोई थी वो आज। जिस लड़की को पूरी जिंदगी उसके माँ बाप तक ने कभी डांटा नहीं था, उस पर विशाल ने आज हाथ उठा दिया। उसके लिए यह लम्हा किसी भयानक सदमे से कम नहीं था, बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर। विशाल का थप्पड़ शालिनी के वजूद पर एक सवालिया निशान छोड़ गया था। और बात जब वजूद पर आती है ना, तो फिर इस दुनिया से कहीं दूर चले जाने का दिल करता है। शालिनी एक पल भी उस शहर में नहीं रहना चाहती थी। कांपते हाथों से उसने लैपटॉप खोला और मायके जाने की अगली फ्लाइट बुक कर ली। जल्दी जल्दी में अपना कुछ सामान समेटकर एक बैग में डाला और बारिश की बिना कोई परवाह किए भीगती हुई एयरपोर्ट पहुंच गई। थोड़ी देर में शालिनी का मोबाइल बजा। उसके पति विशाल की कॉल थी। शालिनी ने देखा मगर रिसीव नहीं किया। स्क्रीन पर शेखर और शालिनी की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। तभी अनाउंसमेंट हुआ, तेज बारिश की वजह से फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी। शालिनी ने गहरी सांस ली और रुमाल से अपना चेहरा पोंछने लगी। मोबाइल स्क्रीन से वो तस्वीर हटाई और कान में शेखर की आवाज ना सुनाई दे, इसलिए उसने ईयरफोन लगाकर एफएम ऑन कर लिया। एफएम पर महेंद्र कपूर गाना गा रहे थे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। आधा घंटा बीता होगा, शालिनी कुछ संभल चुकी थी, बारिश भी कुछ कम हो गई थी, हवा के नर्म झोंके एयरपोर्ट का चक्कर लगा रहे थे। गाने सुनती हुई शालिनी की निगाह एक टक फर्श पर जमी हुई थी और एयरपोर्ट पे कोई और उसको दिख ही नहीं रहा था। ईयरफोन में कोई नगमा उसके एहसास के भीतर कुरेद रहा था। दर्द भरे नगमे अक्सर हमारे दिल के जख्म को ताजा कर देते हैं। गाना बज रहा था, चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर। तभी भीगे हुए एक जोड़ी पांव फर्श पर आकर ठहर गए। फर्श पर एक टक देखती शालिनी ने सिर उठाकर देखा तो चौंक पड़ी, सामने विशाल खड़ा था। दोनों एक दूसरे को एक टक देखने लगे। शालिनी की आंखों में सवाल था कि अब क्यों आए हो, तो वहीं विशाल की आंखों में माफीनामा था। बहुत आहिस्ते से शालिनी के सामने विशाल घुटने टेक के बैठ गया। वह कांप रहा था और शालिनी की ओर ऐसे देख रहा था जैसे अपना सब कुछ गंवा चुका एक आदमी किसी दैवीय मूर्ति के सामने हाथ जोड़े अर्ज कर रहा हो। शालिनी, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज अब घर चलो, मैं अपना चेकअप कराऊंगा, प्लीज शालिनी तुम घर चलो। शादी के 5 साल बाद पहली बार विशाल ने शालिनी से माफी मांगी थी, क्योंकि उसको अब तक कभी अपनी गलती एहसास ही नहीं हुआ और कभी उसने माना ही नहीं कि वो गलत है किसी बात के लिए। शालिनी ने देखा विशाल के गालों पर पड़ी बारिश की बूंदों में उसके आंसू भी शामिल थे और आंसू में झलकता उसका माफीनामा भी। तभी अनाउंसमेंट हुआ, उसकी फ्लाइट का टाइम हो चुका था। एक हल्की मुस्कान लिए शालिनी बेंच से उठ खड़ी हुई। उसने विशाल का हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी हथेलियों को थामा और हौले से थपथपाई। जाओ, माफ किया। इतना कहकर वो बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ गई। विशाल वहीं घुटनों के बल बैठा, गर्दन घुमाकर कातर नजरों से उसे बोर्डिंग गेट के भीतर दाखिल होता हुआ देखता रह गया। बारिश अब पूरी तरह थम चुकी थी। धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया दीपिका जी। म्यूजिक बंद कर दीजिए। हेलो।
हाँ जी,
म्यूजिक हेलो बंद कर दीजिए।
म्यूजिक नहीं चल रहा है वसीम जी मेरे यहाँ तो।
हाँ, वो कुछ शोर आ रहा था मेरे मोबाइल में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत ही अच्छे से अल्फाज की अदायगी की आपने, और यही कहानी की जान है, इस प्रोग्राम की जान है कि छोटे से सेगमेंट में, बहुत छोटे से 5 से 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट के सेगमेंट में हम कहानियों को किस तरह से इमोशनली जुड़ कर पढ़ें और ताकि वो सुनने वाला उस कहानी से खुद को रिलेट कर सके, खुद को जोड़ सके और महसूस कर सके कि कहानी की के वजूद में क्या है। अगर आप इससे इसी तरह कहानियां आपको बुननी है, कहानी बुनो इस प्रोग्राम में। अब इससे कुछ सवाल अगर आपको आए,
बिल्कुल तो वसीम जी, मैं
और हम ये सेगमेंट इसमें रखेंगे दीपिका जी, कि हर जी। लेखक से जो कहानी वो लिखेगा उससे हम उस कहानी से रिलेटेड कुछ सवाल रख सकते हैं ताकि वो और एक्सप्लोर कर सके अपने इमोशंस।
बिल्कुल, मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ इस कहानी से रिलेटेड कि पहले तो आपने जो ये कहानी लिखी तब आपके मतलब क्या सोच रही होगी आपकी, और कहानी का अंत, जैसे मैं पढ़ती जा रही थी तो अंत में मुझे लगा जैसे वो उठी, उसका हाथ हाथ में लिया तो शायद वो वापस चली जाएगी उसके साथ, पर कहानी का अंत बिल्कुल अलग था। तो इसमें आपने क्या ऐसा सोचा कि इस कहानी का अंत यही रखना चाहिए, ना कि वो उसके साथ उसको माफ करके वापस चला जाए?
दरअसल इस कहानी का पर्सपेक्टिव है ना बहुत ब्रॉड है। एक तो पहली चीज कि जब कोई लड़की माँ नहीं बन पाती है तो उस पे तमाम तरह के इल्जामात लांछन लगाए जाते हैं, और हमारा जो समाज है ना वो पूरी तरीके से मेल डोमिनेटेड है, यानी कि पुरुष सत्तात्मक समाज है। तो वो उसमें अधिकतर ज्यादातर मैंने देखा है कि वो अपनी गलती नहीं मानते कि उनसे कोई गलती हो सकती है। और चूंकि बच्चा होना ये मेडिकल टर्म्स है तो चेकअप तो दोनों का होना चाहिए। वो पिछले 5 साल से लड़की यही कह रही है कि कम से कम एक बार अपनी तो चेकअप करा लो, लेकिन वो उसकी उसके मिजाज में था कि वो हर बात पर छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा हो जाता था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने थप्पड़ मार दिया। तो उसने घर छोड़ने का प्लान तो तभी किया। अभी इस कहानी का एक सिरा जो आपने एंड कहा है कि एंड ही ऐसा क्यों किया, ये ओपन एंड है। ओपन एंड का मतलब कि अभी चूंकि वो नाराज है और बहुत दुखी है, थप्पड़ उसको पड़ा है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो इसलिए वो अभी जाना चाहती है। अभी वो लौट के आएगी नहीं आएगी, ये कहानी का ओपन एंड है। ये हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है या हमारे करेक्टर की डिमांड के ऊपर है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 5 साल में उसने कभी माफी तो नहीं मांगी थी, बट आज वो माफी मांगने आया था, माफी मांगी थी उसने। तो
जी
उसमें एक सिरा खोल खोल सकते हैं हम कि वो माफ कर दिया, उसने माफ करके चली गई और कुछ वक्त के बाद गुस्सा ठंडा हो गया, या नहीं भी आ सकती है
बाकी
वो
श्रोताओं के
रिश्ते।
अपने विचार हैं कि कोई कहेगा ये
हाँ
उसने बहुत अच्छा कदम उठाया, कोई कहेगा नहीं उसको
हाँ
वापस
हाँ
जाना
हाँ
चाहिए
हाँ
था।
वो
जी
कहानी,
जी
दीपिका जी मुझे लगता है कि कहानी वही सबसे अच्छी होती है जो एंड में जाकर बहुत सारे सवाल छोड़
सवाल
जाती
छोड़
है।
जाए बिल्कुल
सवाल सवाल भी छोड़ती है, और ये भी कि वो उसका अधूरापन उसकी उसके उसको पूरा करता है, कहानी को पूरा करता है। अगर कहानी हमने पूरी कर दी, हैप्पी एंडिंग कर दी, तो मुझे लगता है मैं ऐसी कहानी अमूमन नहीं लिखता, ज्यादातर कहानियों को छोड़ देता हूं ऐसी जगह पे कि हम सवाल उठाएं और हो सकता है कि उसके कई सिरे निकल के आए, है ना।
जी जी बिल्कुल
तो हमारे इस प्रोग्राम का जो थीम है कहानी बुनो, इसमें इस बात का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा कि कहानियां ऐसी आए और कहानियां ऐसी सेलेक्ट की जाए ताकि उनसे खूब अच्छे अच्छे सवाल निकल कर आए, उनसे जो सामाजिक सरोकार है, जो पूरा सोसाइटी का हमारा सरोकार है कहानी से रिलेटेड, वो निकल के आए और लोग उससे जुड़े और अपनी इमोशंस को बयान करें, खुद लिखना चाहें कि यार हम भी लिख सकते हैं ऐसा, हम भी लिख सकते हैं, है
बिल्कुल
ना। मुझे लगता है कि टाइम आपको आपने बढ़ाया है क्या
जी
दीपिका
जी
जी?
बिल्कुल। मैं चाहती
अभी
थी कि
हमारे पास
आपसे
छह मिनट
प्रश्न
है,
हो तो हाँ जी तो आप इस
6 मिनट
कहानी
है।
के बारे में बता पाएं, और बाकी
हाँ
कहानी की अगली थीम क्या होगी उसके बारे में जरा आप बताइए सबको, ताकि वो अपनी अपनी कहानियां सब तैयार कर सकें और
जी
हमें
बिल्कुल
भेज
दीपिका
सकें,
जी,
ताकि हम उसको
वसीम
अगले हफ्ते
एक,
पढ़ें। और सजीव जी
हाँ सर, सजीव सर के कुछ सवाल हैं।
वसीम, मैं एक बात और पूछना चाह रहा था। ये थोड़ा सा और क्लियर करो कि आपकी कहानी का थीम आपने क्या दिया था जिसके ऊपर आपने ये कहानी बनाई, ताकि जो श्रोता सुन रहे हैं
कहानी का
उनको
थीम
भी।
दीपिका जी ने दिया था, एयरपोर्ट पर बैठी लड़की रो रही है,
हाँ,
इतनी ही थी।
तो अब इसमें जो जो भी कहानी है उसके अंदर एयरपोर्ट आएगा, लड़की आएगी,
जी
मतलब
बिल्कुल। और
तुम ये चाहोगे कि ये कहानी यहीं से शुरू होगी जहां पे तुमने एक पहली
कोई
लाइन
जरूरी
दी।
नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी
तो
नहीं है, कहानी के बीच में भी ये चीज आ सकती है। जैसे अगर हमने शहर का नाम दे दिया तो शहर को आप पृष्ठभूमि बना सकते हैं। अगर हमने रिश्ते का नाम दे दिया, कहानी का मतलब क्लू दे दिया, पॉइंट दे दिया, तो उसमें रिश्ता वो होना जरूरी है। अगर ऑफिस दे दिया तो ऑफिस होना जरूरी है। अगर हमने नदी, यात्रा, पहाड़, झरना, गांव, जंगल या कुछ भी किसी जगह का नाम या कुछ भी हम दे दें तो वो उसका होना जरूरी है। उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी बुनी जाएगी,
हाँ,
वो
यानी कि
एक
जो
तरह
आप
से
तो थीम दोगे वो एक पृष्ठभूमि में बहुत अहम
आना
भूमिका में होना
चाहिए।
चाहिए कहानी
जी
के अंदर।
भूमिका, हाँ अहम भूमिका। अब जैसे मैं श्रोताओं के लिए और नए न्यू कमर्स राइटर्स के लिए मैं अगली अगला टॉपिक दे रहा हूँ। दीपिका जी आप भी इस पे गौर करिए और
जी
आप
जी
बताएं कि आप अपने लिसनर्स को बताएं कि एक लाइन है सिर्फ कि पापा ने कहा था कि वहां मत जाना, लेकिन रोहन नहीं माना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं टॉपिक। पापा ने कहा था कि वहां मत जाना, लेकिन रोहन नहीं माना। यह हमारा टॉपिक है आज का। नेक्स्ट प्रोग्राम यानी नेक्स्ट वीक जब हम प्रोग्राम में आएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी कहानियां आएंगी उससे हम इस पर बुनी हुई जो भी कहानियां आएंगी उसमें हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और
तो
उसको
ये
दीपिका
कहानियां
जी
कहाँ
पढ़ेंगे।
भेजेंगे सब, आप
और
उसका
ये
जरा
कहानियां
पता
भेजने के लिए
बताइए।
हमारा हमारा जीमेल हमारा मेल आईडी है kahanibuno@gmail.com। kahanibuno@gmail.com इस पर अपनी कहानियां भेजिए और कोशिश करें हमारे लिसनर्स हमारे राइटर्स की वो ज्यादा से ज्यादा 500 600 700 800 के करीब कहानियां हों और ज्यादा लंबी ना हो ताकि हम बातचीत का एक सिरा भी रख सकें इसमें ताकि कहानी के साथ साथ एक वैचारिक जो बातचीत है वो भी निकल के सामने आए कि हम कहानी सिर्फ सुने और नहीं और सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उससे रिलेटेड तमाम टॉपिक्स पे बात भी करें। इसलिए जरूरी है कि हम कहानी को थोड़ा छोटा रखें और इसमें एक
मतलब हम ये सब अंदर के लेखक को जगाना चाहते हैं। आप कहानी लिखिए और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका लेखक होना जरूरी है। आप दिल खोल कर लिखिए और दिल खोल कर लिखिए।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसका एक और कहानी लिखने का एक और फायदा हम ये देंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ेंगे मेंटजा ऐप पे कहानी बुनो के साथ कहानियां लिखेंगे उनको हम इनाम भी देंगे। जैसे कि अगर हम एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं तो उसमें से एक बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करेंगे, फिर अगले महीने में फिर एक बेस्ट स्टोरी, फिर अगले महीने में, यानी 3 महीने यानी एक क्वार्टर में 3 कहानियां हमारे पास बेस्ट सेलेक्टेड हो जाएंगी। उसमें से भी शॉर्टलिस्ट करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी 3 फर्स्ट रनर अप सेकेंड रनर अप और फर्स्ट 3 लोगों को हम
हाँ, और वसीम जी जिनकी भी कहानी हम पढ़ेंगे जैसे आपसे आज बात की जब कहानी पढ़ने के बाद तो हम उन कहानीकारों से भी बात करेंगे, उनको अपने स्पीकर पैनल पे बुलाएंगे और उनसे उस कहानी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे क्या, जैसे आज मैंने आपसे प्रश्न किए तो इस तरह से उनको भी आने का मौका मिलेगा और अपनी बात सबके सामने कहने का।
जी वो ज्यादा वो इसलिए भी बेहतर होगा क्योंकि कहानीकार अगर खुद अपनी कहानी को सुन रहा है और उससे हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो जब उससे सवाल होंगे तो वो उसके लिए और बेनिफिट होगा कि वो किस तरीके से अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। हो सकता है कि उसकी कहानी में कहीं कोई एक कमी रह जाए या छूट जाए तो उसे वो समझ में आ जाए तो वो नेक्स्ट में फिर से और जोड़ सकता है या लिख सकता है। और ये भी बात है कि एक आदमी हर सप्ताह कहानी भेज सकता है। मैं कहानी का आईडी भेजने के लिए आईडी में फिर से एक बार बता दूं दीपिका जी।
जी बिल्कुल, कहानी बुनो मैसेज में आ भी गई है, जिसने मिस किया वो देख भी सकता है। आप रिपीट कर दीजिए एक बार उसको।
कहानी बुनो @gmail.com kahanibuno@gmail.com इस पर कहानियां अपनी भेजें।
अच्छा और एक बात और दोस्तों को भी हिंदी लैंग्वेज की पूछा गया है कि हिंदी में या इंग्लिश में, तो मेरे ख्याल से हिंदी लिसनर हैं बहुत
फिलहाल, अभी हम प्रेफर कर रहे हैं हिंदी को
से। जी
अभी हमारी शुरुआत हिंदी से हो रही है, 3 महीने के बाद हम कुछ नया प्लान कर सकते हैं तो इंग्लिश में भी कहानियां ले सकते हैं लेकिन अभी कुछ फिक्स नहीं है। बट हाँ स्टोरी अगर अच्छी आ गई तो,
और अगले हफ्ते पढ़ने के लिए वसीम जी टाइम बताइए कि कितने दिन के पहले आप, मतलब कितने दिन तक आप मांगना चाह रहे हैं ये कहानियां, कब तक हमारे पास आ जानी चाहिए?
ये मंडे तक हमारे पास कहानियां आ जानी चाहिए, हर हाल में मंडे तक हमारे पास कहानियां आ जानी चाहिए। टॉपिक एक बार फिर से बताता हूँ। पापा ने कहा था कि वहां मत जाना लेकिन रोहन नहीं माना। पापा ने कहा था कि वहां मत जाना लेकिन रोहन नहीं माना। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, रोहन को किस चीज के लिए पापा ने मना किया था ये स्टोरी राइटर के ऊपर है कि वो इसमें क्या जोड़ता है, ठीक है, और क्या घटनाएं घटती हैं वो स्टोरी टेलर के स्टोरी राइटर के ऊपर है कि वो कैसे उसको राइटअप करता है, ठीक है।
हेलो, बिल्कुल, थैंक यू सो मच,
थैंक यू ऑल, थैंक यू सजीव सर, थैंक यू दीपिका जी,
थैंक यू सभी का ज्वाइन करने के लिए,
थैंक यू सब लिसनर्स को, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पेशेंटली इस कहानी को सुना और जी उम्मीद करते हैं एंजॉय।
If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.